अध्याय 9 यूदाह की मृत्यु। इसी बीच देमेत्रियस ने सुना कि निकानोर और उसकी सेना युद्ध में हार गई है। तब उसने बक्खीदेस और अल्किमस को फिर यूदा में भेजने का निश्चय किया और उसने उन्हें सेना का पार्श्व भाग दिया। वे गलीलिया होकर चल पड़े और अरबेला के मेसालोथ पहुंचे। उन्होंने उसे अधिकार में कर लिया और बहुत लोगों का वध किया। वे 152वें वर्ष के पहले महीने यरूशलेम के सामने आ पहुंचे। वहां से वे 20,000 पैदल सैनिक और 2,000 घुड़सवार लेकर बरेया की ओर आगे बढ़े। इधर 3,000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर यूदाह एलासा के पास पड़ाव डाले पड़ा था। जब उसके आदमियों ने एक विशाल सेना को आते देखा, सचमुच वो सेना बहुत बड़ी थी, तो वे बहुत अधिक डर गए। बहुत से लोग पड़ाव से भाग गए, उनमें केवल 800 रह गए। जब यूदाह ने देखा कि उसकी सेना भाग रही है और लड़ाई एकदम सिर पर आ गई है, तो उसका साहस टूट गया, क्योंकि अब लोगों को एकत्रित करने का समय भी नहीं था। उसने निराशा में उन शेष लोगों से कहा, चलो हम अपने विरोधियों से लड़ने चले, संभव है हम उनका सामना कर सकें। लेकिन वे उससे असहमति प्रकट करते हुए कहने लगे, नहीं, हम असमर्थ हैं। इस बार हम अपने प्राणों की रक्षा की ही सोच सकते हैं। हम अपने भाइयों को लेकर शत्रुओं से लड़ने फिर लौटेंगे। हमारी संख्या बहुत थोड़ी रह गई है। यूदाह ने कहा, ऐसा नहीं होगा, हम उन्हें पीठ क्यों दिखाएं? मरना ही है तो हम अपने भाइयों के लिए लड़ते हुए मरें। हम अपने सम्मान पर आंच क्यों आने दें? उस समय शत्रुओं की सेना उनका मुकाबला करने के लिए पड़ाव के बाहर आ रही थी। उनके घुड़सवार दो दलों में विभक्त थे। गोफन चलाने वाले और तीर चलाने वाले लोग सेना में आगे आगे चल रहे थे। सर्वोत्तम सैनिक सबसे आगे थे। बक्खीदेस दाहिनी ओर था। सैनिक दल तुरहियां बजाते हुए दोनों ओर से आगे बढ़ रहे थे। इधर यूदाह के लोगों ने भी तुरहियां बजाई। सेनाओं के कोलाहल से पृथ्वी हिल उठी। लड़ाई सवेरे से शाम तक चलती रही। जब यूदाह ने देखा कि बक्खीदेस और उसकी सेना का प्रधान अंग दाहिनी ओर है, तो उसने अपने सब साहसी लोगों को अपने पास बुलाया और उन्होंने उस दाहिने अंग को पीस डाला। वे उन्हें अजोत की पहाड़ियों तक खदेड़ ले गए। जब बाईं ओर के सैनिकों ने देखा कि दाहिना अंग पिस रहा है, तो वे मुड़कर यूदाह और उसके आदमियों का पीछा करने गए। घमासान युद्ध हुआ और दोनों ओर के बहुत से लोग मारे गए। यूदाह भी खेत रहा, शेष लोग भाग खड़े हुए। तब योनातान और सिमोन अपने भाई यूदाह को उठाकर ले गए और उन्होंने उसे मोदीन के अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान में दफनाया। उन्होंने उसके लिए शोक मनाया और इज़राइल भर के लोगों ने उसके लिए विलाप किया। वे उसके लिए कई दिनों तक शोक मनाते और कहते रहे, ये वीर योद्धा कैसे मारा गया? यही तो इज़राइल का उद्धारक था। यूदाह का शेष इतिहास, उसकी लड़ाइयां और उसके द्वारा किए गए वीरता के कार्य तथा उसकी महत्ता, वो सब लिखित नहीं है, क्योंकि वो अपार है। यहूदियों का नेता योनातान, 160 से 143 ईस्वी पूर्व। योनातान। यूदाह की मृत्यु के बाद विधर्मी इज़राइल भर में फिर दिखाई पड़ने लगे। उन दिनों घोर अकाल पड़ा और लोगों ने उनका साथ दिया। बक्खीदेस ने विधर्मियों को चुन चुन कर उन्हें देश का अधिकारी बनाया। वे यूदाह के समर्थकों को ढूंढ ढूंढ कर बक्खी देश के पास ले जाते और बक्खी देश उन्हें दंड देता और उनकी हंसी उड़ाता था। इस तरह इज़राइल की स्थिति ऐसी दुखद हो गई जैसी वो तब से कभी नहीं हुई थी जब से उनके यहां कोई नबी नहीं था। इसलिए यूदाह के सभी मित्रों ने आकर योनातान से कहा, जब से आपके भाई यूदाह की मृत्यु हुई उनके समान ऐसा कोई नहीं रहा जो शत्रुओं के विरुद्ध बक्खी देश और हमारी जाति के विरोधियों से युद्ध कर सके। इसलिए आज हम आपका चुनाव करते हैं जिससे आप यूदाह के स्थान पर हमारे नेता बने और हमारी ओर से युद्ध करें। योनातान ने उसी समय नेता बनना स्वीकार कर लिया और अपने भाई यूदाह का पद ग्रहण किया। तकोआ के पास योनातान। जैसे ही बक्खी देश को इस बात का पता चला वो उसकी हत्या करने की सोचने लगा। जब योनातान उसके भाई सिमोन और उनके सभी साथियों को ये बात मालूम हुई तो वे तकोआ के उजाड़ खंड की ओर भाग गए और उन्होंने असफार कुंड के पास पड़ाव डाला। बक्खी देश को विश्राम के दिन इसका पता चल गया और वो अपनी सारी सेना लेकर यर्दन पार कर गया। इधर योनातान ने अपने एक भाई को युद्ध की सामग्री के साथ अपने मित्र नबातई लोगों के पास भेजा और उनसे निवेदन किया कि वे ये विपुल सामग्री अपने पास सुरक्षित रखें, किंतु मेदेबा के यमब्री लोगों ने छापा मारकर योहन को गिरफ्तार किया और उसका सारा सामान ले लिया। इसके बाद वे अपनी लूट के साथ लौटे। योनातान और उसके भाई सिमोन को कुछ ही दिनों बाद मालूम हुआ कि यमब्री लोगों के यहां भारी धूमधाम से विवाह हो रहा है और प्रतिष्ठित सामंत की कन्या नदाबाय से विशाल बारात के साथ लाई जा रही है। उन्हें अपने भाई योहन की हत्या की याद आई और उन्होंने जाकर अपने को पहाड़ियों के पीछे छिपा लिया। जब उन्होंने आंखें उठाई तो ये देखा कि भारी धूमधाम से बड़ी भीड़ चली आ रही है। वर, उसके मित्र और उसके भाई बाजों, संगीतकारों और बहुत से अस्त्र शस्त्रों के साथ उनकी ओर आ रहे हैं। तब वे ओट से उन पर टूट पड़े और उनको मार गिराया। बहुत लोग मारे गए और शेष पहाड़ियों पर भाग खड़े हुए। उन्होंने उनका सारा सामान लूट लिया। विवाह शोक में और उनका वाद्य संगीत विलाप में बदल गया। इस तरह उन्होंने अपने भाई की हत्या का बदला लिया और वे फिर यर्दन के निकट की दलदल भूमि में लौट आए। यर्दन तट पर बक्खी देश और योनातान। बक्खी देश को इसका पता लगा, वो एक विशाल दलबल के साथ यर्दन तट पर आया। वो दिन विश्राम दिवस था। योनातान ने अपने आदमियों से कहा, चलो हम जाकर अपनी प्राण रक्षा के लिए लड़ें। आज हमारी स्थिति वही नहीं रही जो कल तक थी। हम पर सामने से या पीछे से आक्रमण हो सकता है। हमारे एक ओर यर्दन फैली है, दूसरी ओर दलदल है, झाड़ियां हैं, भाग निकलने का कोई उपाय नहीं। अब स्वर्ग के ईश्वर की दुहाई करो जिससे तुम शत्रुओं के हाथ से बच निकलो। युद्ध आरंभ हुआ। योनातान ने बक्खी देश को मार गिराने के लिए हाथ उठाया लेकिन वो पीछे हट गया। तब योनातान और उसके आदमी यर्दन के जल में कूद पड़े जिससे वे तैर कर उस पार हो जाएं। शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं किया, वे यर्दन पार नहीं गए। उस दिन बक्खी देश के लगभग 1,000 आदमी मारे गए। तब वो यरूशलेम की ओर चल पड़ा और उसने यहूदिया के अनेक किलाबंद नगरों का निर्माण किया। उसने येरिखो, अम्माउस, बेथोरन, बेतेल थमना था फारथोन और तेफोन के गढ़ बनवाए और उन्हें ऊंची दीवारों फाटकों और अर्गलाओं से सुदृढ़ किया। उन सब में उसने एक सेना दल रखा जिससे वो इज़राइल पर छापा मारते रहे। उसने बेतसूर और गेजेर नगरों और यरूशलेम के गढ़ को भी सुदृढ़ किया और उनमें सैनिक और खाद्य सामग्री रखी। उसने देश के कुलीन पुत्रों को पकड़कर और यरूशलेम के गढ़ में बंद कर बंधक के रूप में रखा। अल्केमस की मृत्यु। अल्केमस ने 153 वर्ष के दूसरे महीने में मंदिर के भीतरी आंगन की दीवार गिराने की आज्ञा दी। उसने नबियों द्वारा निर्मित भवन का विनाश करना चाहा। जैसे ही विध्वंस शुरू हुआ अल्केमस को दौरा पड़ा और काम रुक गया। अल्केमस का मुंह बंद हो गया। उसे ऐसा लकवा मार गया कि वो न एक शब्द बोल सकता था और न अपनी गृहस्थी के विषय में कोई आदेश दे सकता था। अल्केमस का कष्ट बढ़ता गया और उन्हीं दिनों उसकी मृत्यु हो गई। जब बक्खीदेस ने देखा कि अल्केमस की मृत्यु हो गई है तो वो राजा के पास लौट गया। इसके बाद यूदा में 2 साल तक शांति रही। बक्खीदेस और योनातान की भिड़ंत। इसके बाद विधर्मियों ने मिलकर यह कहते हुए परामर्श किया, देखो योनातान और उसके आदमी शांति का जीवन बिताते हैं और अपने को सुरक्षित समझते हैं। अब हम बक्खीदेस को बुलाएं, वो रात भर में ही सबको पकड़ लेगा। इसलिए वे उसके पास गए और उसे ऐसा करने का परामर्श दिया। बक्खीदेस ने एक बड़ी सेना लेकर चलने का निश्चय किया। उसने यहूदिया में अपने मित्रों के पास छिपे तौर पर चिट्ठियां भी लिख भेजी जिससे वे योनातान और उसके दल को पकड़ ले, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उन लोगों को इस बात का पता चल गया था। बल्कि इसके विपरीत योनातान के लोगों ने ही ये षड्यंत्र रचने वालों के लगभग 50 आदमियों को पकड़कर मार डाला। इसके बाद योनातान और सिमोन अपने सारे लोगों के साथ बेतबासी गए, जो उजाड़ खंड में अवस्थित नगर है। उसने वहां खंडहरों को फिर से बसाया और उन्होंने उस जगह को सुदृढ़ किया। जब बक्खीदेस को इस बात का पता चला तो उसने अपनी सारी सेना एकत्रित की और यहूदिया से भी आदमी बुलाए। उसने आकर बेतबासी को घेर लिया और बहुत दिनों तक उसके लिए युद्ध करता रहा और उसने युद्ध यंत्र भी बनवाए। योनातान ने अपने भाई सिमोन को नगर में ही छोड़ दिया और कुछ आदमियों को लेकर खुले मैदान में निकल पड़ा। उसने अदोमेर और उसके भाई बंधुओं को हराया और फसीरी लोगों के शिविर में घुसकर उन्हें पराजित किया। इन विजयों के फलस्वरूप उसकी सेना की वृद्धि होती गई। उधर सिमोन और उसके आदमी नगर के बाहर टूट पड़े और युद्ध यंत्र जला डाले। वे बक्खीदेस के विरुद्ध लड़ते रहे जो बुरी तरह हार गया और अपनी योजना की असफलता देखकर बहुत उदास हुआ। इसलिए उसका क्रोध उन विधर्मियों पर भड़क उठा जिन्होंने उसे यहां बुलाया था। उसने उनमें से बहुतों को मार डाला और अपने देश लौट जाने का निश्चय किया। इज़राइल में शांति। जब योनातान को इसका पता चला तो उसने उसके पास दूत भेजे जिससे वे उसके साथ संधि कर ले और युद्धबंदियों को लौटाने का प्रबंध करें। बक्खीदेस ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर उसके अनुसार कार्य किया और ये शपथ खाई कि वो आजीवन उसकी हानि नहीं करेगा। वो युद्धबंदी लौटाकर अपने देश लौट गया। उसने यह निश्चय किया कि वो उनके देश में फिर कभी नहीं आएगा। इस प्रकार इज़राइल में तलवार को विश्राम मिला। योनातान मिकमास में रहने लगा और वहां रहकर लोगों का न्याय करता था। उसने इज़राइल के समस्त विधर्मियों का वध किया।